نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آيات نمبر 148 سے 158 سورة بقرة 148 to 158 سورة بقرة پچھلے سبق میں ہم نے تحویل قبلہ کا حکم دیکھا ہم اس کے بارے میں ابھی بھی بہت کچھ بات کر سکتے ہیں لیکن جو بات ہمارے اس میں سے اپنے لیے لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو مختلف امتحانات سے گزارتا ہے تاکہ لوگ اس کے مطابق اللہ کے حکم کو مانیں اور تبدیلی قبلہ جو تھی اصل میں ایک امت کو اس بات کی خبر دینا تھی کہ جب جہاں چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کوئی بھی حکم لے آئے تو مان جاؤ کیونکہ اگر ہم قبلے کی تبدیلی پہ بات کریں گے تو اور جتنی مرضی لمبی بات کر لیں لیکن آج کے ہمارے اس سبق میں بھی آپ دیکھیں گے کہ قبلے کا تذکرہ پھر دوبارہ آئے گا اور بہت ساری چیزیں جو پچھلے حصے سے ہمیں سمجھ نہیں آئیں تھیں وہ یہاں سمجھ آئیں گی تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں آیت نمبر 148 سے اب آپ کو ایسے لگے گا آج سنتے ہوئے کہ بار بار ایک ہی بات کیوں کی جا رہی ہے تکرار لگے گی لیکن انشاءاللہ آپ ان کے احکامات کی جب اصل جانیں گے تو پھر آپ کو زیادہ بات اچھی طرح سمجھ آئے گی پچھلے سبق کے ساتھ آج کے سبق کو جوڑتے ہوئے قبلے کی تبدیلی اصل میں امت کی تبدیلی تھی مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اب تمہیں امت وسط بنایا جا رہا ہے جہاں یہ خوشی کی بات ہے وہاں یہ ذمہ داری کی بھی بات ہے تو لہٰذا جب اللہ کا حکم آئے اس وقت لوگوں کا حال کیا تھا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ملا تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ رجب یا شعبان کا مہینہ تھا 2 ہجری تھا شروع ہی کی بات ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا صحابی ان کے گھر پہ تھے اس وقت ظہر کا وقت آیا آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے 3ری رکعت میں رکوع کے دوران وہی آئی اور آپ اسی دور پہ جھکے اور جو لوگ آپ کے پیچھے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ہی جھک گئے برا بن عازب کہتے کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے حکم سنتے ہی سب کے سب اسی حالت میں کعبے کی طرف مڑ گئے حضرت انس کہتے ہیں کہ بنی سلمہ قبیلے میں یہ اطلاع اگلے دن فجر کی نماز تک پہنچی کیونکہ اس وقت میسیجنگ سسٹم اتنا سٹرانگ نہیں تھا جتنا آج ہے کہ پتہ چلے کہ ابھی بات ہوئی کہیں بھی ہے اور ساری دنیا میں خبر پھیل گئی تو بات پہنچتے پہنچتے اگلے دن کی صبح ہو گئی لوگ 1 رکعت نماز پڑھ چکے تھے اور 2ری رکعت میں تھے اور آواز آئی کہ خبردار رہو قبلہ تبدیل ہو گیا سنتے ہی پوری جماعت نے ایک رخ بدل دیا آپ اس سٹرونگ سسٹم کو سمجھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اب نبی تو نہیں گئے وہاں ایک عام صحابی نے کہا کہ میں بتا رہا ہوں کہ قبلہ بدل چکا ہے لہٰذا لوگوں نے فوراً رخ چینج کیا اور بالکل رخ چینج ہو گئے یہ معاشرہ چاہیے اصل میں یہاں یہ بات لکھی ہے کہ اسلام ایک ایسا مسلمان معاشرہ چاہتا ہے سمع و اطاعت کا اتنا بھرپور سسٹم ہو کہ ذمہ داران تو ذمہ داران ہیں عام لوگ بھی اگر ایک دوسرے کو کسی بات پہ کچھ کہیں تو بعد میں یہ نہ ہو کہ یہ اپریل فول تھا یہ تو جوک تھا یہ تو میں نے فن کیا یہ تو مذاق تھا اور یہ تو بس ایسے ہی تھا یہ گروپ بنے گا تو پوری دنیا مسلمانوں کو دعائیں دے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں نبی کے ذریعے امت کو ایک ایسا خوبصورت پیغام دیا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو تم نے اس کے بعد چون چرا نہیں کرنا ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نہیں دیکھنا اور شطر المسجد الحرام کہہ کر بتا دیا کہ اپنے دل کو کھلا رکھو رخ صحیح ہو 19-20 کے فرق سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب جب یہ آیت سامنے آتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ امید لگ جاتی ہے کہ یہ لوگ تو اب ضروری مسلمان ہو جائیں گے یہ تو اسلام کو قبول کر لیں گے تو خوش فہمیاں دور کر دی کہ آپ تو ان کو چاہیں ساری آیتیں بھی دکھا دیں پھر بھی نہیں مانیں گے اس سے کیا پتہ چلتا جن کے دلوں میں تعصب ہوتا ہے نا ان کو صحیح بات سمجھ نہیں آتی پیغمبر حریص ہوتے ہیں دوسروں کی ہدایت کے جو لوگ اپنا بھلا نہیں چاہ رہے ہوتے نا نبی ان کا بھی بھلا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے احساسات کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری باتیں کر کے اب دوبارہ اس بات کی خبر دے دی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نہیں مانیں گے. اب وجہ کیا ہے؟ آج کے سبق کی آیتوں کو دیکھیں گے نا تو آپ کو آج بہت کچھ سمجھ آئے گا کہ آخر لوگ کیوں نہیں مانتے. تو آئیے اس کا جواب لیجئے. آیت 148 وَلِكُلِّن وِجْهَتُن وَا اور لی واسطے کل ہر ایک اور ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے. وچ کا لفظ اگر واؤ کی زبر کے ساتھ ہوگا نا وچ تو چہرے کو کہتے ہیں. یہ فرق نوٹ کیجئے گا. ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے والی کلن وجہتن. وچ چہرہ, وجوہ اس کی جمع, فیس کے معنوں میں. دیکھیں نا ایک ہوتا ہے فیس ایک ہوتا ہے ماؤتھ. یہاں فیس نہیں مراد, وچ. وچ کہتے ہیں رخ کو. انکلائنیشن, سینٹر آف لیونگ. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہر ایک کا ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے, ہر ایک کی ایک سوچ ہوتی ہے. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل میں شاکلہ بھی کہا گیا ہے. ہر ایک کلو یعملو علی شاکلہ, ہر ایک اپنی شاکلہ پہ عمل کرتا ہے. تو یہاں وچ سے مراد ہے سمت, رخ, ہابی, چوائس, پسند, ناپسند. اور اگر اس کو اور جنرل کریں تو ہر ایک کا ایک گول ہوتا ہے. ہوا مولیہا, وہ رخ کرنے والا ہے اس کی طرف. مولی مولی پلس ہا, یہ دو لفظ ہیں. وہ مولی ہے, اسم فاعل ہے یہ اس کا. وہ منہ پھیرنے والا ہے, یعنی ہر بندہ اپنے ہی گول کی طرف بھاگ رہا ہے. تم کیا کرو مسلمانوں؟ فاستبقوا الخیرات, تم نیکیوں میں دوڑ لگاؤ, تم جلدی کرو, تم بھاگ دوڑ کرو, بحثوں میں نہ پڑو, وقت ضائع نہ کرو. کون حق پہ کون باطل اس کو چھوڑ دو. اللہ نے ہر ایک کا ایک رخ متعین کر دیا, تمہارے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا. اب باطنی رخ تم خود اختیار کرو, اور وہ کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں جلدی کرو. تمہیں نماز کے ہر کام کو کرتے ہوئے بھی اور زندگی کے ہر کام کو کرتے وقت فکر ایک رکھنی ہے کہ میری زندگی بڑی مختصر ہے, مجھے اس کو اچھے کاموں میں لگانا ہے. نماز کا بھی ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے. بظاہر آپ باوضو ہوتے ہیں, قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں, نماز کے سارے ارکان پورے کر لیتے ہیں, لیکن اگر نماز کے اندر خشوع نہیں ہے, خضوع نہیں ہے, رقت نہیں ہے, آنکھوں میں آنسو نہیں ہے, تو مان لیجئے کہ آپ کی نماز بے روح ہے. اور نمازوں کو روح دینے کے لیے یا فاستبقوا الخیرات کو بڑھانے کے لیے کیا کرو؟ اس بات کو یاد رکھو. کس بات کو؟ اینما تکونو, جہاں بھی تم ہو گئے. دیکھیں یہاں اینا کے بعد تکونو ہی کافی تھا, ماں کی ضرورت نہیں تھی. اینا کہیں بھی, لیکن ماں لگ گیا تو کیا معنی ہوا؟ جہاں کہیں بھی. یہ جو ماں ہے نا اس نے معنی میں وسعت پیدا کر دی ہے. اینما تکونو, جہاں کہیں بھی تم ہو گئے. بات سمجھے؟ خالی اینا تکونو ہوتا تو معنی کیا ہوتا؟ کہیں بھی تم ہو گئے. لیکن اینما تکونو, جہاں کہیں بھی تم ہو گئے, مراد ایوری ویئر. اس میں معنی میں بہت وسعت ہو گئی. کیا کرے گا اللہ؟ یاتی بکم اللہ, لے آئے گا تم کو اللہ. یاتی تھا آنا, با کی وجہ سے لانا ہو گیا, گیدرڈ کے معنوں میں. اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا. کیسے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو جواب دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے, اس کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ جو پہلے ہی لفظ ہے نا ولی کلی, لی جو ہوتا ہے نا واسطے کے لیے, کل کو اگر آپ دیکھیں نا تو یہ ایک ایسا اسم ہے جو کئی لوگوں کا اکٹھا ذکر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے واحد, ایک. یہ واحد کے اجزاء کو عام کرنے کے لیے آتا ہے, اور اس کے ساتھ ضرور اضافت آتی ہے. یعنی ولی کلن میں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے گنجائش پیدا کر دی ہے کہ ہر ایک, انگلش میں آپ اس کو کیسے ترجمہ کریں گے؟ ایچ اینڈ ایوری ون. ایک ہوتا ہے ایوری ون, نہیں, ईच एंड एवरी वन। तो वली कुल्लिन में ये बात समझ आ गई और तकरार के मानी आ जाते हैं इसके ऊपर। अरब लोग कहते हैं कुल्लमा अता का जैदुन अक्रिम हो, जब कभी भी जैद तेरे पास आए तो इसकी इज्जत करना। अगर आप कहते हैं ना जब जैद आए तो उसकी इज्जत करना, तो इससे क्या समझ आता है? एक दफा आएगा इज्जत कर देना। आपकी माँ कहती है जब मेहमान आएंगे ना तो इज्जत कर देना, खाना खिला देना। पर एक और सोच है जब कभी भी मेहमान आएंगे उनको खाना खिलाना। ये फर्क है इसमें ली कुल्ली में। अब आप अपने लफ्जों में इसको जिस तरह भी लिख लीजिए लिख सकते हैं। और मौसूफ की सिफत को इंतहाई हद तक बयान करने के लिए ही आता है। जैसे पीछे आपने पढ़ा सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम, वहां भी कुल्लुहुम था, फरिश्तों ने सजदा किया, बात खत्म। नहीं, कुल्लुहुम सारों के सारों ने कर दिया। और जो कुल का लफ्ज होता है ना, ये वाहिद मुफरत और मुजक्कर है, यानी खुद वाहिद है लेकिन इसका मफहूम जो इसका आगे मुजाफ होगा, मुजाफ इलैह होगा, उसके एतबार से होगा। जब मुजक्कर के लिए भी आ जाता है फिर मुअन्नस के लिए भी आ जाता है। कुल्लु शयइन फ़अलहु बिहुक्मिही, कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने यहाँ इतना ज़्यादा इसको एम्फेसाइज किया है कि वली कुल्लिन हर एक के लिए ये चीज़ मौजूद है। आगे भी हम पढ़ेंगे वहबना लहु इसहाक व याकूबा व कुल्लन जालना नबीयन, व कुल्लन और हमने सबको नबी बनाया। इसी तरह एक जगह आएगा व इस्माईल व इदरीस व ज़ुल्किफ़्ली कुल्लुम मिनस साबिरीन, वो सारे के सारे सब्र करने वालों में से थे। ये जो लफ्ज़ एंड पे है ना जमीयन जमा से है, जम उन और जमात उन लोगों के गिरोह को कहते हैं, भीड़ ढेर जिसको आप कहते हैं। तो जमी कहते हैं लोगों की जमात और जमा की हुई चीज को कहते हैं। जमा यजमाऊ जमा करना, उर्दू में भी हम ये लफ्ज़ बोलते हैं कि हम लोगों को जमा करेंगे। खैर इतनी बात में से अब आपको मुझे जो बात अपने लिए समझ आती है वो क्या है कि हर बंदे की ज़िंदगी का एक गोल होता है। मैं और आप अपना गोल ढूंढें, सच बताइए। और याद रखिए वली कुल्लिन पे मैंने इतना वक्त क्यों लगाया, इसमें मोमिन काफिर फाजिर मुसलमान नॉन मुस्लिम दीनदार बेदीन हर बंदा शामिल है, औरत भी मर्द भी। और आप देखेंगे कि हर बंदे ने अपनी जिंदगी में किसी एक चीज को पकड़ा हुआ है। किसी का खेल क्रिकेट फुटबॉल हॉकी, बस उनका गोल वही है, उनकी जिंदगी सारी उसके इर्द गिर्द घूम रही है। जो भी होगा करेंगे, ये होगा वो होगा, ये करना है ये होगा, ये दिस एंड दैट, ठीक है। अब आप बताइए कि कुछ है उनका खेल क्या है, कमाना, बच्चे घर में है, खानदान में शादी है, बहन भाई घर में जमा है, वो कहते नहीं मुझे काम करना है, इस वक्त कस्टमर बहुत आते हैं, उसका खेल है। कुछ खवातीन को आप देख लें, उनकी पूरी जिंदगी खाना पकाना घर साफ करना, हर एक ने अपने आप को क्या, आप इमेजिनेशन में लाए। मैं जब भी साइज पे आती हूँ ना वली कुल्लिन वजहतुन, तो मेरे जहन में पता क्या आता है, एक गेंद है और कोई उसके पीछे भाग रहा है। आप अपना विज ढूंढें, मेरा आपका विज क्या है, मेरे प्लान्स किस में है। आप इसको ऐसे भी समझें कि इवन जानवरों के भी गोल्स होते हैं, उसका भी विज है, खाना पीना बैठना जुगाली करना। जानवर जो होते हैं ना उनकी विज ख्वाहिशात की तकमील है, भूख लगी खा लिया, गंदगी करने को दिल चाह जहां दिल किया वहां कर दी, सोने को दिल किया सो दिया, भां भां करना वह भां भां कर दिया। ये एनिमल इंस्टिंक्ट होती है कि इंसान जानवरों के दर्जे पे रहे। मेरी जिंदगी का गोल क्या है, बिल्कुल यकीन करें इस वक्त अपने आप को इस क्लासरूम से निकाल दें, मुझे भी भूल जाए, अपने दामन में झांकें, ये हैं आप जो आपको अंदर से दिखा है। जो बंदे का विच होता है ना ध्यान उधर ही रहता है। आपको पता है ना जिससे प्यार होता है ना बातों में उसका जिक्र आ जाता है। कुछ औरतों को अपने बच्चों से प्यार होता है, हर बात में अपने बच्चों की बात करेंगी। किसी को अपने शौहर से मोहब्बत होती है तो थोड़ी सी बात के बाद अपने शौहर का तस्करा शुरू कर देंगी। किसी को खाने का शौक है, थोड़ी देर बाद बातें खाने की शुरू हो जाएंगी, कोई व्हाट्सएप करके मैसेज दर जाता है। आजकल तो मुझे लगता है 80% दुनिया का विच उनका सेलफोन है, नींद में भी देख रहे होते हैं कोई मैसेज तो नहीं आ गया। किसी ने भेजा, एक तो मैंने पढ़ा कि एक बच्चा कहता है कि काश मैं स्मार्टफोन होता, क्यों, कि अब्बू अम्मी उसको बार बार देखते हैं, सुनते हैं, मैं बुलाऊं तो चिढ़ के बोलते हैं, उसको दबक दबक के उठते हैं और देखते हैं। अब ये विच है ना, किसी की फेसबुक उसका विच है, कोई व्हाट्सएप के मैसेज चेक कर रहा है ये उसका विच है, किसी को आज क्या नई फैशन आ गया उसको देख लें क्या सेल पे लगी, किसी का जिंदगी का गोल सिर्फ सेल के साइन पढ़ के जाके शॉपिंग करना और घर को अस्तबल बना देना या घर को क्लोजेट बना देना, कुछ बैठ के एक फैशन देखते रहते हैं अब क्या चल रहा है, कुछ का रुख, नई फिल्म कौन सी आई, आजकल कौन सा बंदा इनने, आपका मेरा क्या है। एक शायर ने बहुत रहम किया हम सब पे, एक शेर का मिसरा बोल के, बंदा है मोमिन का गोल क्या हो, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, इस किरदार की बात हो रही है। अपने आप से पूछे, मेरा दिल अटका हुआ है कुरान में, हर काम के बाद थोड़ी देर बाद कुरान उठा लेती हूँ, सुनती हूँ तो कुरान, पढ़ती हूँ तो कुरान, लिखती हूँ तो कुरान की बात, तफसीर सुनती हूँ तो कुरान की, शौक है दुनिया के हाथों में देखने का तो कुरान को, मेरा क्या दिल करता है कि सारे दिल कुरान के नूर से रोशन हो जाए, इनलाइटन द हार्ट्स विद द नूर ऑफ अल कुरान, अल्लाह करे मेरा आपका ये विज बन जाए। मैं रात को जब इसकी तैयारी कर रही थी, मैंने बड़ी दयानतदारी के साथ, आपसे मुझे कोई अवार्ड नहीं लेना, आपके सही कोई नहीं क्या मुझे देंगे, मैंने बड़ी दयानतदारी के साथ अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते खुद भी अपना जायजा लिया, बगैर किसी शक और तरद्दुद के कहूंगी कि मुझे अपनी जिंदगी का मकसद इस कुरान की खिदमत लगा। मैं शादी में कहीं चली जाऊं, मैं किसी के घर खाने पे जाऊं, कोई मुझे बुलाए, मैं बीमार हूं, मैं सेहतमंद हूं, मेरी जिंदगी इस कुरान के साथ घूमती है। खाने का वक्त, जाने का वक्त, शॉपिंग का वक्त, छुट्टियां देनी नहीं देनी लेनी, कुरान कुरान कुरान, इस बात में सच्चे हैं। कल अल्लाह को कहेंगे, अल्लाह नीयत ये थी कि लोगों में कुरान की धाको हमें अपनी नहीं चाहिए, कुरान से लोग जुड़ जाए, हमसे ना जुड़े, अमल में बड़ी कमजोरियां हैं, लेकिन विच यही था, बस नहीं चलता। खुशी होती है किसी को तो कुरान से जुड़े देखकर, उसकी खिदमत करके, उसको संजीदा लेते हुए, और गुस्सा आता है, तकलीफ होती है, दुख होती है तो इसी से रूगरदानी करते हुए। कल आपके इसी क्लासरूम में शाम की एक क्लास शुरू हुई, हमें ऐसे लग रहा था कि हमारा ईद का दिन है, और वहां बैठ के मैं आप लोगों को याद कर रही थी कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मैं कितने नेकियों के मौके दिए, एक चांस मिस हो गया देंगे आ जाती है, आप में से सबके लिए मौका है जिन्होंने शुरू से नहीं सुना, जब शुरू में सुना भी और समझ ही नहीं आई, कभी कभी होता है ऐसा, अब आप वो पहला पारा दोबारा आके सुन सकते हैं, तो सिर्फ तफसीर सुने, 2-2.5 घंटे की क्लास है, बमुश्किल 2 घंटे क्लास होती है, बीच में नमाज भी चल रही है, अभी ब्रेक भी चल रही है, आप फिर कहेंगे अच्छा आज समझ आई है औज़ुबिल्ला। कहने का मतलब जिंदगी में मौके आते हैं, आप और मैं संजीदा होके ले लेंगे तो फायदा होगा, नहीं लेंगे तो हमारे लिए बात नहीं। फस्तबिकुल खैरात, तुम्हारा गोल नेकियों की तरफ भागना हो, खीरत उनकी जमा खैरात, बहुत कसीर और खूबी की बात को खैरात कहते हैं। अच्छा हमारे यहाँ क्या कहते हैं, बाबे को खैरात दे दो, मेरे हाथ को देखेंगे ना तो किसी के आगे हाथ फैला के लोग कहते हैं खैरात डाल दो, तो हम कहते हैं वो एक डब्बा आटा डालना खैरात होती है, हालांकि खैरात लफ्ज है बहुत कसीर खूबियों की बात है, हर शय से अफजल चीज को खैरात कहते हैं। या मुराद क्या है, इस्लामी आमाल और अज़कार की तामील में सबकत करना, आगे बढ़ो, डोंट बी लेजी, ढीले ढीले नहीं चलो, बढ़ बढ़ के चलो, आगे चलो, तुम अपनी जिंदगी की इस छोटी सी ड्यूरेशन में वो नेकियां कर जाओ जो लोगों ने बड़ी बड़ी उम्रों में किया, सुस्त लोग थोड़ी नेकियां करते हैं। आप देखिए ना कि आपने कभी हर्डल रेस देखी होगी या मैराथन रेस देखी होगी, अब आप देखिए कि ये सारी रेस जो होती है ना इसमें वक्त कम होता है, पहुंचना सबने आगे होता है, आप और मैं अपनी जिंदगी को एक रेस समझें, वल्ला ही आयत अगर आज आप मैं समझ गए ना तो मेरी सुस्तियां तो जरूर खत्म होंगी और मेरी नींद भी कम हो जाएगी और मेरे खाने पकाने के औकात में भी इतना ज्यादा अल्लाह के हुक्म से रब्त हो जाएगा कि मैं कोई ऐसा खाना नहीं पकाऊंगी जो आधा दिन ले ले और उसके बाद थकन की वजह से मेरी नमाज चली जाए या मेरी क्लास चली जाए और मैं बीमार हो जाऊं। मैं ऐसे कोई कपड़े नहीं बनाऊंगी कि मैं जिसको अफोर्ड नहीं कर सकती, किस तरह, माल से नहीं, जिसकी केयर नहीं मैं कर सकती, मुझे रिलैक्स रहना है। फस्तबिकुल खैरात, किसी को कोई यहाँ से एक ऐलान कर दे कि यहाँ से फिरसर सेंटर तक चले जाओ, जितने कदम चल लोगे हर कदम के नीचे $100 का नोट होगा, जहाँ रुक जाओगे वहीं तुम्हारे कदम गिन लिए जाएंगे। सच बताइए उस वक्त स्पीड क्या होगी, मारे मारे, मुर्दा मुर्दा, हमें तो जैकेट पहनने की भी होश नहीं रहेगी, नीचे जाते ही डॉलर शुरू हो जाने, और एक एक $100 है आपका, तकरीबन 800-900 करोन बनता है, 100 करोन होगा तो आप यहाँ तक क्या, आप तो कहेंगे कि ज़रा थोड़ा आगे हेब्रोतन भी ले जाओ, तो हम उधर भी जाने को तैयार हैं। फस्ता बिल्कुल खैरात, आज दुनिया की दौड़ किधर है, माल, दौलत, जॉब, पढ़ाई, पढ़े हुए फिर पढ़ रहे हैं, कमाते हुए फिर कमा रहे हैं, दुनिया दरवाजे तक पड़ी है, संभालने की फुर्सत नहीं, फिर कमाने का शौक है, बड़े भी बच्चे बन गए, बच्चे भी बड़े बन गए, नेकियां जाया होती हैं तो होने दे। आप देखिए कि अल्लाह के नबी ने कहा कुरान का एक लफ्ज़ पढ़ो तो 10 नेकियां, और एक लफ्ज़ पे 10 तो दूसरे पे भी 10। आप सिर्फ आज के सबक के जाके लफ्ज़ गिनिएगा घर में, इन 10 आयतों के लफ्ज़ गिनिएगा, जैसे वा, ली, काफ, लाम, लाम, वाओ, जीम, वाओ भी 2 दफ़ा बल्कि, फिर जीम, फिर हा, फिर ता, ये सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं ना, वाली कुल्ली विजहतुन, ये देखिए मेरी उंगलियों पे 11 लफ्ज़ का हिस्सा ही निकल, तो ज़रब दीजिए 10 से, 110 नेकियाँ आप ले चुके, और सुबह तजवीद में पढ़ा, लफ्ज़ी तर्जमे में पढ़ते हैं, आप सुन रहे हैं, और जितनी दफ़ा यहाँ वाली कुल लिन विछातुन 110 110 110, आपसे ज़्यादा अमीर दुनिया में अब कौन होगा। एक छुट्टी करके हम कितने सबक बाद में मेकअप हो जाएगा, फस्ता बिल्कुल खैरात नहीं होगा, आपका हिस्सा ही निकल गया उसमें से। और आपके साथ अगर कोई रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, जो होती हैं, अब देखिए ना, कल हमने इसी हॉल में आपके साथ बैठ के की हुई रिकॉर्डिंग सुनी आउज़ु बिल्लाह की तफसीर, तो आपको अजर नहीं मिला उसका। आज बिलुल जन्ना पूरी दुनिया में सैकड़ों जगह पे चल रहा है अल्लाह के हुक्म से, ये नॉर्वे से रिकॉर्ड हुआ था आज से 5-6 साल पहले। वो सब साथी जो सोकस स्टूडेंट थे, वो खामोश हिस्सेदार हैं फस्ता बिल्कुल खैरात में, तर्जमे याद करते हैं, तर्जमे रिकॉर्ड करवाती हूँ, सामने 4 लोग बैठ जाएं या 50 बैठ जाएं, वो तर्जमा सैकड़ों बार चलता है ऑनलाइन क्लासेस में, आपको मुझे पता ही नहीं, ये कल पता चलेगा, उस दिन हम कहेंगे वो खो क्या खोया और क्या पाया। आज नेकियों की कदर नहीं करते, सिर्फ छोटी सी बीमारी हमें रोक लेती है, और याद रखिए जितने मुश्किल हालात की नेकी उतना फस्ता बिल्कुल खैरात ज़्यादा होगा। अल्लाह कदर बड़ी करता है, आप दुनिया में भी इसको देखेंगे तो फिर करना क्या, कह इनामा तकून याति बिकुम अल्लाह, अपना रुख देखें। नंबर एक, चेक कीजिए आज जाकर घर में, लुक एट योर डायरेक्शन, सही रुख पे जा रही हूँ, सही रुख पे जा रहे हैं, स्पीड कम है फिर भी नुकसान है, और जा गलत रुख पे रहे और भाग टूट भाग रहे हैं फिर भी नुकसान है। देखिए ना, दुनिया में आपको लोग इतनी बड़ी बड़ी नेकियां करते दिखेंगे पर रुख ही नहीं ठीक, आज आगे बात आएगी इंशाल्लाह, इसी में आगे आ रही है, नबी ने बताई कोई नहीं वो नेकियां, खुद साख्ता नेकियों के कुछ वर्जन बना के लोग बैठ गए, ये भी नेकी, ये भी नेकी, ये मुहर्रम की नेकी, ये सफर की नेकी, ये रबी अव्वल की नेकी, और ये फलां की नेकी, नबी ने तो नहीं स्टैंप लगाई। अब वो भाग रहे हैं, खिला रहे हैं, पुकार रहे हैं, ख़त्म पे ख़त्म हो रहे हैं, खाने खिला रहे, दही बड़े बना रहे, पिज़्ज़े के पैसे दे रहे, ज़ाया हो जाएंगे। फस्ता बिल्कुल खैरात के लिए सबसे पहले अपना रुख चेक करें, गलत रास्ते पे भाग के थक के सो जाएंगे, जाएंगे तो नहीं अपनी जगह पे, तो इसलिए संजीदगी की ज़रूरत है। नेकी के कामों में जाते वक्त अपना रुख चेक करो, तमाम अमल अच्छे, एक नहीं, और फिर देखिए खैर नहीं का, अपनी पसंद की कोई नेकी कर लो, नहीं मुझे सदका देना अच्छा लगता है मैं सदका ही दे दिया करूँगी, नहीं, खैरात, दीन का एक भरपूर सरसब्ज दरख्त बनो, ये भी नोट है करने की बात, पूरे दीन पे अमल करो, नेकियों को हासिल करने में, गुनाहों से रुकने में, कबूलियत में आगे बढ़ो। और इसमें एक और चीज़ भी लिखें कि नमाजों की जल्दी करो, पीछे नमाज की जिक्र है, क़िबले की बात है, सुस्ती के मारे आखिरी वक्त में टाल टाल कर नमाजें ना पढ़ो, जब नमाज का वक्त आ जाए फिर उसके बाद तुम अपने आप को अल्लाह के सामने खड़ो, क्योंकि इन्नमा तकूनु याति बिकुम अल्लाह, आज तो तुम बार बार अल्लाह से कह रहे हो अल्लाह अभी वक्त नहीं है, अभी वक्त नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसी मौत आएगी कि तुम्हें अल्लाह तुम्हारी हलक से जान निकाल कर ले जाएगा, तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिलेगी किसी और काम की। तो नेकियों में भलाई करने में सबसे पहली चीज़ वही इलाही की तबा और सुन्नत रसूल की तबा, कुरान और सुन्नत। इसके बगैर भाग दौड़ ये सिर्फ कुछ भी नहीं है उसके अंदर मिलता, आमिलातुन नासिबात वाली बात हो जाती है। और जब तुम अल्लाह के पास आओगे अल्लाह ताला तुम्हें इकट्ठा करेगा। सवाल पैदा होता है कि जब हम अल्लाह के सामने जाएंगे तो अल्लाह हमारा करेगा क्या? मिसाल है ना, किसी को बुलाते हो, कहते हैं बुला के मेरे साथ करना क्या है? तो मैं और आप सोचें, जब अल्लाह हमें जमा करेगा तो क्या करेगा? सारी जिंदगी का हिसाब लेगा। दूसरी बात, नेमतों का हिसाब होगा। सुम्मा लतुस्सलुन्ना यौमइज़िन नईम, तुम जवाबदेह होगे। और ये सोच बंदे के जमीर के अंदर एक क़यामत बरपा कर देती है। हज़रत उमर कहा करते थे, लोगों अपना हिसाब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। और जब हम अल्लाह के सामने जाएंगे तो तीसरी चीज़, हर पोशीदा मामला भी खुल के सामने आ जाएगा। वतुबलस सरायर। और जब ये फीलिंग आती है तो फिर इंसान में क्या चेंजेस आती हैं, ये अगला सवाल लिखे। तो फर्क ये पड़ता है कि इंसान बुराई करते हुए खौफ महसूस करता है, केयरफुल हो जाता है। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये क्यों आया यहाँ जुमला? कि वो तुम्हारी बुसीदा हड्डियों को, गली सड़ी हड्डियों को मिट्टी से निकालने पर भी कादिर है। और तुम्हारे वो 40 साल पुराने गुनाह भी याद है उसको, मत सोचो कि अल्लाह भूल गया। इसलिए यहाँ कुदरत की बात हुई। बाज़ दफ़ा बंदा कहता है इतने पुराने हिसाब किसने खोलने हैं, कुछ भी नहीं होगा। और इस तरह से एक इंसान अल्लाह के कदीर होने का सोचकर फिर अपनी भी फिक्र करता है। अच्छा, हमारा क्या हाल है? सेल कब लगनी है मुझे पहले से बताना। ये मैं आपको अपना ईमेल दे रही हूँ, जिस दिन सेल लगेगी ना मैसेज भेज दें। ये फ़ोन नंबर ले लें, जिस दिन ये प्रोडक्ट 50% डिडक्शन पे आएगा ना मुझे ज़रूर मैसेज करें। दुनिया के लिए जल्दी जल्दी, और दीन ख़त्म कब है? दुआ किस दिन है? मुझे ख़त्म पे ज़रूर बुलाइएगा। दुनिया शुरू पे और दीन आखिर में, आखिरी वक्त पे जाएंगे, थोड़ी सी दुआ शुआ कर लेंगे, फिर दही बड़े और पिज़्ज़ा खा के आ जाएंगे। अब कौन 3 घंटे बैठे जाके इतना पढ़े? फस्तबिकुल खैरात अइनमा तकूनू। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी दौड़ आखरत की तरफ कर दे और हम बेहतरीन तरीके से अल्लाह की बात को मानने वाले बन जाएं।
وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ